नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जागृति।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कजाकिस्तान में एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 4 पदक पक्के। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। थॉमस कप बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम इंडोनेशिया से हारकर ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में हरियाणा ने मणिपुर को 8-0 से हराया। और शुरुआत करेंगे जीत के साथ। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल ने आज सेमीफाइनल में प्रवेश कर अपने पदक पक्के कर लिए हैं। आर्यन ने 51 किलो भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के जुराव शकरबॉय को 5-0 से हराकर भारत को बेहतरीन शुरुआत दी। इसके बाद यशवर्धन ने 63.5 किलो भार वर्ग में ईरान के मिर हमादी बाबा हैदरी को 4-1 से हराया। दूसरी ओर प्रियांशु ने 71 किलो भार वर्ग में चीनी ताइपे के वू यूएन और साहिल ने 80 किलो भार वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के यकलीमोव अब्दिरहमा के खिलाफ रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट RSC के फैसले के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो इन लोगों की जीत को किस तरह से देखते हैं? 4 पदक भारत के पक्के हो चुके हैं।
देखिए, अच्छी चीज ये है कि ये पुरुषों के वर्ग में हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल पेरिस ओलंपिक्स हैं और अभी तक किसी भी पुरुष मुक्केबाज ने भारत के अपने लिए कोटा प्लेस नहीं अर्जित किया है। हमारी सिर्फ महिला मुक्केबाजों ने पेरिस में अपनी जगह बनाई है, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओलंपिक मेडल आया हुआ है मुक्केबाजी से। और एक समय था जब मेन और वुमेन दोनों में हमारे लगातार टॉप पे मुक्केबाज चल रहे थे, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से थोड़ा सा गिराव आया है, वो अच्छी चीज नहीं है। उस तरह से महिलाओं में जरूर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पुरुषों में उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं, ना रिजल्ट्स आ पा रहे हैं, ना टाइटल्स आ पा रहे हैं। तो ये थोड़े से जरूर चिंता की बात थी कि क्या भारतीय पुरुष मुक्केबाजी अब वापस दोबारा ऊपर कैसे आएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जरूर अच्छी खबर है ये, लेकिन अंडर 22 और यूथ लेवल पे है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी यूथ चैंपियंस हैं या जूनियर चैंपियंस हैं या लगातार पदक जीत चुके हैं अलग अलग एज ग्रुप लेवल पे। तो वो एक अच्छी चीज है कि कंसिस्टेंसी है और वो अपना एक स्टेप आगे जाके भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है ज्यादा बड़ी बात है ये, क्योंकि अभी जितने हमारे हैं वो उस तरह से नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बात टैलेंट की नहीं है, लेकिन बड़े मुकाबलों में आपका प्रदर्शन अगर नहीं आएगा तो आपको अपनी जूनियर्स की तरफ देखना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, बात टैलेंट की नहीं होती है, क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी की कमी है, और इस समय हमारा टारगेट जो है ओलंपिक्स है।
बिल्कुल, और उम्मीद है कि जो अभी क्वालिफायर्स होंगे उसमें एटलीस्ट एक आध हमारे को कोटा प्लेस जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, बट अभी तक नहीं आया है। तो इसीलिए जो आज की हालत है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये अगली जनरेशन के लिए जरूर अच्छा संकेत है।
चिंताओं के बादल कुछ हल्के से छटेंगे जरूर इससे। और यूथ सेमीफाइनल शुक्रवार को खेला जाएगा। यूथ और अंडर 20 वर्ग के फाइनल 6 और 7 मई को खेले जाएंगे। और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से चल रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। इन दोनों टीमों के इस मैच को किस तरह देखते हैं? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो है 9 मैच में 10 अंक हैं और वो चौथी जगह इस प्लेस पर है, और पंजाब किंग्स के 9 मैच में 6 अंक हैं और वो 8वें स्थान पर है। तो मुकाबला कहां आप देखते हैं?
देखिए, चेन्नई के लिए ज्यादा जीतना जरूरी है क्योंकि ये होम पे हो रहा है और इसके बाद जब ये वापस अवे खेलने जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किल ही होगी। तो घर पे जितने पॉइंट्स आप जीत सकें उतना अच्छा है, और जिस तरह से अभी जा रहा है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि आप रनों के लिए लगातार शिवम दुबे पे भरोसा किया है इन्होंने और शिवम दुबे आज नहीं चले हैं, रविंद्र जडेजा हिट करते हैं वो नहीं चले हैं, हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अभी खेल रहे हैं, बट 13 ओवर में 85 अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं है T20 के हिसाब से, खास करके अगर इस IPL की हम बात करें जहां पे 200 का आंकड़ा बहुत आसानी से हर टीम पार कर रही है। तो हालांकि चेन्नई का उस तरह का कभी नहीं रहा है कि आप 250-300 के आसपास लगातार मारें, पर ये चेन्नई के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तीन टीमें ऑलरेडी उनसे बहुत ऊपर हैं। अभी राजस्थान 16 पॉइंट पे पहुंच चुकी है, दो टीमें 12-12 पॉइंट पे हैं और 10 पे और भी टीमें हैं उनके अलावा जिनके साथ नेट रन रेट पे चीजें आके अटक सकती हैं। तो अगर आपको टॉप फोर में फिनिश करना है और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, 5 टाइम की विनर टीम है ये, तो इस लेवल पे आके अभी अपने आप 10वें 11वें मैच में जब खेल रहे हैं बिजनेस एंड में, आपके पास बहुत ज्यादा मैचेस बचे नहीं हैं, तो उनका इस पड़ाव पे आके इतना ये प्रदर्शन थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है। हालांकि लगातार कहा जाता है कि यू कैन नॉट जज अ मैच अंटिल बोथ टीम्स हैव प्लेड, तो अभी देखना बाकी है और अभी भी उम्मीद है कि 150-170 तक तो स्कोर बिल्कुल जा सकता है इनका, और अगर 150 के ऊपर जाता है, 170-175 के आसपास जाता है तो थोड़ी उम्मीद जरूर रहेगी। हालांकि बॉलिंग में भी इन्होंने चेंज किया है, इस बार तुषार देशपांडे नहीं है, मतीशा पतिराना भी नहीं है जो लगातार दोनों इनके विकेट टेकिंग रहे हैं, तो क्या सोच है ये तो उनकी टीम मैनेजमेंट बेटर बता पाएगी, पर इस मौके पर आके चेन्नई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहां तक पंजाब की बात है वो 6 पॉइंट पे हैं, मैथमेटिकली वो मैच से वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं है अभी, लेकिन प्रैक्टिकली उतने चांसेस नहीं है उनके, उम्मीदें कम है, पर यहां पे अगर वो जीतते हैं तो मोराल जरूर बहुत ऊपर होगा। और जैसा मैंने कहा कि काफी टीमें 10-8-6 के आसपास पॉइंट्स पे हैं अभी, तो यू नेवर नो, मैथमेटिकली वो है और यहां से अगर वो लगातार जीतते चले जाते हैं तो उनकी चांसेस जरूर बने रहेंगे
जी। और कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 145 रन का लक्ष्य 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में वेस्टइंडीज और अमरीका में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है और टीम का नेतृत्व राशिद खान करेंगे। अफगानिस्तान की टीम के लिए क्या कहेंगे?
देखिए, टाइटल जीतना शायद थोड़ा ज्यादा है उनके लिए अभी, पर टीमों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। हमने IPL में भी देखा है जितने भी अफगान खिलाड़ी हैं, खास करके जो उनकी गेंदबाजी है वो हर टीम के हर प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आते हों, तो गेंदबाजी हमेशा से उनकी ताकत रही है, वो दूसरी टीमों के लिए बिल्कुल खतरा हो सकते हैं। खुद चाहे टाइटल जीतें या ना जीतें, लेकिन दूसरों की जीत के रास्ते में जरूर वो बहुत बड़ी अड़चनें लगा सकते हैं।
बिल्कुल, और उनका खेल जो है हर डिपार्टमेंट में अगर देखें, बॉलिंग है या बैटिंग है, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें। और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि और ये पिछले भी हम टूर्नामेंट्स में देख चुके हैं, चाहे वो 50 ओवर हो या 20 ओवर्स के टूर्नामेंट्स में, कि टीमों को उन्होंने हराया है, अपसेट्स किए हैं, बड़ी टीमों को हराया
है
और बायलैटरल में भी वो लगातार, ऐसा नहीं है कि उनको वन साइडेड किसी टीम ने मारा है हमेशा, और फाइटर हैं बिल्कुल, और कभी भी ऐसा उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि अफगानिस्तान की टीम रैंकिंग के हिसाब से चाहे जहां पे भी हो, लेकिन उनके जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली राशिद खान जो उनके कप्तान अपॉइंट हुए हैं, वो नंबर 1 पे रह चुके हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, तो उनको हल्के में लेना मेरे ख्याल से किसी भी टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकता है।
उनको हल्के में नहीं लेना है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल बांग्लादेश के साथ अपना 30वां T20 मैच खेलेगी। 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच को जीतकर भारतीय टीम का लक्ष्य बांग्लादेश पर विजयी बढ़त बनाने का होगा। पिछले 2 मैचों में अपने प्रतिद्वंद्वी को हर मोर्चे पर मात देने वाली भारतीय टीम एक बार फिर इसी प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम के इरादे जीत के हैं, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल, चांसेस भी हैं और पहले दो मैच वो जीत भी चुकी हैं, तो सीरीज जरूर अपने नाम पूरी जीत के साथ करने की कोशिश करेंगी वो, पर आसान नहीं होगा मैं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि खेलों में अगर किसी चीज की गारंटी हो सकती तो फिर वो खेल नहीं रह जाते। कोई भी टीम कभी भी कुछ कर सकती है, क्योंकि उस दिन आप ग्राउंड पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश के पास हैं खिलाड़ी, खासकर की बॉलिंग में, जो भारतीय बैटिंग को परेशान कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि टीम हल्के में लेगी, पर पलड़ा जरूर मुझे लगता है कि भारतीय टीम का भारी रहेगा।
और अब बात करते हैं थॉमस कप की। चीन में थॉमस कप बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम अपने ग्रुप के अंतिम मैच में इंडोनेशिया से हार गई है। भारतीय टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही। एचएस प्रणॉय ने पहले सिंगल्स में भारत को 1-0 की जीत दिलाई, लेकिन लक्ष्य सेन अपना मुकाबला हार गए। इस समय किदांबी श्रीकांत अपना सिंगल्स का मुकाबला खेल रहे हैं। डबल्स की अगर बात करें तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, और दूसरी ओर ध्रुव कपिला और साई प्रतीक की जोड़ी भी अपने मुकाबले हार गई है। तो ग्रुप मैच में जो भारत का लग रहा था कि वो टॉप पर रहेंगे, रिजल्ट्स अभी ये हैं कि 3-1 से इंडिया जो है लॉस्ट है और एक मैच चल रहा है।
देखिए, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी थी टीम, ये अच्छी बात है कि पहले दोनों अपने जो टाइज थे थाईलैंड और इंग्लैंड के साथ वो आसानी से जीत के, और इंडोनेशिया के साथ जो उनका टाई था वो टीम प्लेसिंग की वजह के लिए ज्यादा जरूरी था कि आप अपने ग्रुप में कहां फिनिश करते हैं। तो जब ये खत्म होगा और ग्रुप बी के भी खत्म हो जाएंगे मैचेस, उसके बाद ड्रॉ जब फाइनल होगा कि कौन सी टीम के साथ आप खेल रहे हैं, उस पर वो ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आप सेमीफाइनल में, आप क्वार्टर फाइनल में माफ कीजिए, किसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वहां से नॉकआउट शुरू होगा और वहां से कमबैक का कोई मौका नहीं बचेगा। यहां पर आपके पास फिर भी अब एक सेकेंड चांस है, आप अपने ग्रुप में जरूर सेकेंड फिनिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप आगे किस तरह से खेलते हैं वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, थोड़ा बहुत उसका भी प्रेशर होगा। हालांकि भारतीय जो खिलाड़ी हैं खासकर के बैडमिंटन में अब प्रेशर उस तरह से लेते नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे आपको जीतने की आदत है, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है लगातार। पर दो चीजें हैं, एक तो आप चाइना में खेल रहे हैं जहां बिल्कुल आसान नहीं होता है, वहां पे जो क्राउड है वो उसके सामने आपका खेलना बहुत मुश्किल होता है। ये लगातार चाइना में बैडमिंटन और टीटी दो ऐसे खेल हैं जहां पे आप अगर बायचांस चाइना के किसी खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए अपने आप को मेंटेन करना उस लेवल पे। तो वो चीज थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि ड्रॉ किस तरह जाता है इनका क्वार्टर फाइनल का। और दूसरा, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आज तक लगातार आप जब ऐसे टूर्नामेंट्स में जाते रहे हैं तो आप अंडरडॉग रहे हैं, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अब जब आप डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में वहां जा रहे हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर जरूर रहेगा कि आपको टाइटल डिफेंड करना है। आसान बिल्कुल नहीं होगा, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी एटीपी मुटुआ मैड्रिड ओपन के पहले दौर में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन से अप्रत्याशित रूप से हारकर बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष डबल्स चैंपियन बोपन्ना और एबडेन को 1 घंटे 17 मिनट तक चले इस मैच में कोर्डा और थॉम्पसन की जोड़ी से 7-6, 7-5 से हार का सामना करना पड़ा। और चलते चलते बात कर लेते हैं नेशनल हॉकी लीग की। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में आज महाराष्ट्र ने मिजोरम को 3-0 से हराया। एक अन्य मुकाबले में हरियाणा ने मणिपुर की टीम को 8-0 से हरा दिया। मध्य प्रदेश ने ओडिशा को शूटआउट में 3-2 से हराया। इस समय अंतिम मैच झारखंड और बंगाल के बीच खेला जा रहा है। कल पहले मैच में ओडिशा की महिला टीम ने हरियाणा को 4-1 से, दूसरे मैच में महाराष्ट्र ने मणिपुर को 5-1 से, तीसरे मैच में मध्य प्रदेश ने बंगाल पर 1-0 की जीत दर्ज की, जबकि चौथे मैच में मेजबान झारखंड ने मिजोरम को 3-0 से हराया था। चलते चलते इस लीग के लिए आप जो टीमें आपस में खेल रही हैं क्या कहेंगे?
देखिए, महिला हॉकी के लिए अच्छी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं, और क्योंकि इसमें ज्यादातर अंडर 21 की लड़कियां हैं तो आपको एक अगली खेप ढूंढने में ज्यादा आसानी रहेगी यहां पे।
बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।